SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
तृप्ति, सबसे पहले तो आपका SBS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है.
थैंक यू.
सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया आकर कैसा लग रहा है?
मेरे को ऑस्ट्रेलिया आके बहुत अच्छा लग रहा है. एक छोटी सी दुनिया से निकल के इतनी बड़ी दुनिया में आना इज लाइक बहुत अमेजिंग फीलिंग है.
बिल्कुल. तो तृप्ति, आपने कहा कि आप एक छोटी सी दुनिया से निकलकर एक बड़ी सी दुनिया की ओर कदम रख रही हैं. मैं चाहूंगी कि आप अपने शब्दों में हमारे श्रोताओं को अपने सफर के बारे में जरा बताएं.
जी बिल्कुल. तो मैं अपने रहन सहन से शुरू करती हूँ. तो मैं दिल्ली के एक छोटे से स्लम में रहती हूँ जो कि एक बहुत पॉश एरिया में है, लेकिन वो एक स्लम है जिसके बारे में ज्यादा लोग को पता भी नहीं है. तो मेरे घर वाले 6 मेंबर्स हैं, उनके साथ रहती हूँ. मेरा जो शुरू से अपब्रिंगिंग, मेरा जो बचपन रहा है हमेशा से, उस स्लम में रहना, ऐसे माहौल में रहना इज लाइक वेरी चैलेंजिंग. तो आपके पास सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, आपको पानी के लिए बाहर लाइन लगानी पड़ती है, आपको सामाजिक वॉशरूम में जाना पड़ता है, देन आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका कोई लीगल सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज जो आपकी जगह है वो एक स्लम है, ज्यादा लोग उस पर फोकस करते नहीं है. तो बहुत लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग रहती है स्लम में. एंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो पढ़ाई. तो मेरे यहाँ पे मतलब मैंने खुद देखा है कि बहुत लोगों का क्या होता है कि 10वीं कर ली, 9वीं कर ली, 12वीं कर ली, फिर इसके बाद पढ़ाई नहीं करनी. तो मेरा भी कुछ शुरू में ऐसे ही था कि मेरे को पढ़ाई तो नहीं छोड़नी थी, पर मेरा ऐसा था कि मैं 12th करने के बाद मैं कॉलेज ओपन से कर लूंगी, क्योंकि रेगुलर में इतनी फीस देना, फिर रेगुलर से कॉलेज करना, और उतना टाइम मैंने सोचा कि मैं कोई छोटी मोटी जॉब करके अपने फैमिली को सपोर्ट करूंगी, अपने घर को सपोर्ट करूंगी. तो मेरी जो बड़ी बहन है वो भी अभी जॉब कर रही है, तो उन्होंने पहले ओपन से करके उन्होंने भी जॉब की थी. तो मैंने सोचा मैं भी ऐसे ही करूंगी, अपने घर वालों को सपोर्ट करूंगी. देन दैट वॉज माई मतलब वो टाइम है ना, मेरी लाइफ का चेंजिंग टाइम कह सकते हैं. तो उस टाइम आशा एक NGO है
जी.
तो उनकी दीदी एक जो मतलब एक तरीके से उनके जो मेंबर्स होते हैं, तो एक दीदी आई हमारे एरिया में और वो हमें आशा के बारे में बता रही थी. आशा में बेसिकली तो मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते खेलने जाते हैं तो वो लोग ऐसे खिलाते विलाते थे, बचपन से हम वैल्यू सीखते थे. लेकिन ड्यू टू वहाँ पे जो उनका सेंटर था जिस रूम में वो लोग पढ़ाते थे हमें, वो सेंटर मतलब खराब हो गया था, तो उसके वजह से सारा काम कुछ सालों के लिए रुक गया था. तो वो दीदी दोबारा, जब मेरी 12th खत्म होने वाली थी, मैंने एग्जाम दिए थे, तब वो दोबारा आई थी, मोनिका दीदी. तो उन्होंने मुझे बोला कि आशा में हम लोग एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं जिसमें हम सारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं और इनके कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं, और एडमिशन के बाद हमारी फीस भी भरते हैं. तो उन्होंने मेरे को, मेरे फैमिली को समझाया कि हायर एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और रेगुलर में कितना जरूरी है अगर आपको आगे जाके अच्छी जॉब चाहिए. तो मैंने दीदी की बात मान के फिर मैं आशा में मैंने आना जाना शुरू कर दिया कि ठीक है, मैं भी अब अपनी लाइफ बनाऊंगी. तो आशा से ही मेरी सारी जर्नी शुरू हुई है. उससे पहले मैं खुद कुछ नहीं थी. उस टाइम से मुझे पता चला कि हाँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, मैं लोगों से बात भी कर सकती हूँ. तो उस टाइम से मेरा कॉन्फिडेंट है वो बिल्ड होने लग गया. तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प कराई, तो मेरा इंग्लिश ऑनर्स में मोतीलाल नेहरू कॉलेज में एडमिशन हुआ
जी.
तो मेरी 3 की फीस आशा ने पे की है, जिससे कि मेरे को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो और मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो. और जब मैं पढ़ाई करती थी तो आशा में वो सेंटर, जो सेंटर नहीं था, तो वो लोग दीदी खुद आते थे हमें पढ़ाने के लिए. हम किसी भी घर में, दोस्त के घर में बैठ के दीदी हमें पूरा गाइड करती थी कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना. धीरे धीरे करते हुए हम लोग आशा से इतना जुड़ गए कि हम लोग कोविड आया था बीच में, उस टाइम हमारा सारा काम हुआ था. तो हम लोग एज आए ना वॉरियर, जो कोविड वॉरियर होते हैं ना, वैसे हम लोग काम कर रहे थे. तो जब सब अपने घर में थे, हम लोग है ना बाहर कोरोना में लोगों की हेल्प कर रहे थे, तो हमें बहुत प्राउड फील होता था कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन से इतना जुड़े हुए हैं और हमें इतना चीजें करने के लिए मिल रही है. तो एक दिन डॉक्टर किरण मैम, जो कि उसकी फाउंडर है, जिनको हम माँ भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने सारे बच्चों को एकदम अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रखा है, वो मुझे भी, हम जितने भी बच्चे हैं आश्रम में सबको अपने बच्चों जैसा रखती है. उन्होंने पूछा कि तृप्ति क्या तुम विदेश जाना चाहती हो. तो मुझे पहले थोड़ा सा अजीब लगा कि मैंने कहा मैम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही है मुझसे कि विदेश जाना चाहती हूँ, ये कोई छोटी बात थोड़ी है और मैम को पता है मैं कहाँ से. तो मैम फिर मुझे ये पता चला था उस टाइम कि आशा का एक प्रोग्राम है जिससे जो पोटेंशियल बच्चे हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, जिनके इंग्लिश अच्छी है, जो बहुत अच्छे मैथर्स हैं, तो उनको ये स्कॉलरशिप देते हैं. उस टाइम से मैंने एक सपना देखना शुरू कर दिया कि हाँ मेरे पास भी एक चांस है, क्या पता मैं भी चली जाऊं. तो मैं अपना पूरी मेहनत करती थी, मैंने पूरी पढ़ाई में बिल्कुल मेहनत की, मैंने अपना 100% दिया, मैंने अपनी इंग्लिश को बिल्डअप किया ताकि मेरे को बाहर का एक्सपोजर हो. तो आशा ने मुझे मक्वारी इंटरनेशनल में उसमें एक मंथ की इंटर्नशिप भी दिलाई ताकि हम लोग जो बच्चे हैं उनको थोड़ा बाहर का एक्सपोजर हो, ताकि हम और सपने देखें बेसिकली. क्योंकि उसके बाद थोड़ा मेरा मन किया कि उससे पहले मुझे नहीं पता था कॉर्पोरेट क्या होता है. तो उधर काम करने के बाद मुझे लगा कि हाँ कॉर्पोरेट भी कोई चीज होती है. तो तब से मेरा मन हुआ कि अब मुझे कुछ करना है जिससे मैं कॉर्पोरेट की तरफ जा सकूं. मेरा एक लाइन बन गया कि मैं कॉर्पोरेट की तरफ जॉब करना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा करना है. तो फिर डॉक्टर किरण मैम ने मुझे पर्सनली मेंटर किया, उन्होंने बताया कि क्या जरूरत है क्या नहीं है. पूरे इस पूरी जर्नी में डॉक्टर किरण मैम और जितने भी आशा के स्टाफ है, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की. और धीरे 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 प्रोसेस शुरू हुआ. फिर मैंने 9 महीने आशा में ही पेड इंटर्नशिप की. तो हमारे आशा में जो भी बाहर बच्चे जा रहे होते हैं इनको ये पेड इंटर्नशिप देते हैं ताकि ये लोग कुछ सीखे भी, और ताकि हम लोग क्योंकि स्लम से है तो थोड़ी हमारी अर्निंग भी हो जाए. तो फिर मैंने उसके बाद मैम ने, डॉक्टर किरण मैम ने मेरा पूरा प्रोसेस स्टार्ट करवाया. मैंने अपना आईएलटीएस एग्जाम दिया जिसमें मेरे 7.5 ओवरऑल आए थे. और फिर मैंने अपना वीजा अप्लाई करके फाइनली मैं सिडनी में आ गई.
बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है आपका, है ना. और कह सकते हैं कि आशा ने आपको एक आशा दी है और इसके आगे तो पूरा आसमान है आपके पास. पूछना चाहूँगी कि आप मास्टर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक पब्लिक रिलेशंस का कोर्स कर रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से, तो ये कोर्स चूज़ करने का कोई खास कारण?
जी, तो एक कारण तो यही था कि मुझे कोई भी ऐसा कोर्स करना था जिससे मैं किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सकूं. और दूसरा कारण ये था क्योंकि मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया था, तो मैंने सारे कोर्स सिडनी में इवेल्युएट किए और मुझे सबसे अच्छा, जो जिसमें लगा कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ, ये मेरे पसंद का कोर्स है जिसमें मैं अपनी पूरी तरीके से अपना पोटेंशियल कर सकती हूँ, तो मुझे ये कोर्स लगा, तो इसलिए मैंने ये कोर्स चूज किया.
तो तृप्ति, आपने बताया कि जब आपको पता चला सबसे पहली बार कि ये स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है और आप ऑस्ट्रेलिया आने वाली हैं, तो आपको पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ था, है ना. लेकिन मेरे को जानना है कि आपके परिवार वालों को कैसा लगा ये सुनकर, आपके आसपास के दोस्तों का क्या रिएक्शन था?
जब माँ बाप को बहुत ज्यादा प्राउड होता है तो बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है. तो जब मैम ने मेरे घर वालों से बात की, मतलब वो लोग बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था उनको भी कि हमारा बच्चा भी बाहर जा सकता है. और क्योंकि मैं पहली लड़की हूँ अपने घर में जो विदेश आके पढ़ाई कर रही हूँ, जो कि पूरे खानदान में पहली लड़की हूँ, तो उनके लिए सबसे प्राउड मोमेंट है. एंड वो लोग बहुत ज्यादा खुश है. जब भी मैं उन्हें कॉल भी करती हूँ ना, ये कहते हैं कि आज मुझे ये मिले, ये पूछ रहे थे कि आपकी बेटी कैसी है. तो उनको बहुत प्राउड होता है जब लोग उनसे पूछते हैं कि आपकी बेटी विदेश में पढ़ रही है, आपको कैसा लग रहा है. एंड मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव है. इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे एयरपोर्ट तक भी छोड़ने आए थे और वो लोग कहते हैं, हाँ मेरे को भी नहीं पता था, वो सुबह सुबह कह रहे कि हम तुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं. और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कह रहे हैं कि हमारे ग्रुप में हमारा कोई फ्रेंड है जो इतनी दूर गया है. तो लोग बहुत प्राउड फील करते हैं.
बिल्कुल. तो तृप्ति, अभी आप यहाँ आ गई हैं, अभी तो वैसे काफी कम समय ही हुआ है, लेकिन क्या आपका ऑस्ट्रेलिया में रहने का ही इरादा है या फिर वापस जाकर कुछ समय बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद, नौकरी करने के बाद वापस जाएंगी?
मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया में रहने का तो कुछ नहीं सोचा है क्योंकि मैं वापस जाना चाहती हूँ. क्योंकि अभी जब मैं फैमिली से दूर आ गई तो मुझे लग रहा है कि कितना मुश्किल है अपनी फैमिली से दूर रहना. और मेरा यही है कि मैं वापस जाके, जैसे आशा ने मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि ये एक जर्नी है, ये एक एवोल्यूशन है कि हम आशा की वैल्यू है पेड फॉरवर्ड, कि जो हमें मिला है हम दूसरे बच्चों को भी दे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वापस जाके अपने स्लम को और जितने भी स्लम में आशा काम कर रही है तो मैं उनकी हेल्प करूँ, ताकि मेरे जैसे और बच्चे पोटेंशियल जो है जिनमें कुछ करने की लगन है, जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो उनको भी इस रास्ते से उनको भी ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिले, या उनके लिए भी बहुत बड़े बड़े चांस निकले। वापस जाके मैं कोई जॉब करूंगी और मैं आशा के साथ उनका हेल्प कराऊंगी।
जी, तो तृप्ति, अभी आपका सेमेस्टर शुरू हो गया है ना, और भारत में जो पढ़ाई होती है और बाहर के देशों में जो पढ़ाई होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि विदेश में ज़्यादातर प्रैक्टिकल लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है। तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पढ़ाई को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर भी, लोग कैसे हैं?
लोगों के कहूँ तो मैं, लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्पफुल है। तो जब मैं पहले फर्स्ट डे यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे कोई था नहीं जो मुझे कुछ बताता कि क्या करना है, तो मैं इधर उधर है ना खुद से निकल गई थी गूगल मैप लेके। तो मैं अगर किसी से कुछ पूछ भी रही थी ना तो वो लोग रुक के मेरी हेल्प कर रहे थे। इवन एक लेडी ने मेरे को पूरा उस जगह तक छोड़ा था, बिकॉज वो उसी रूट पे जा रही थी। तो पहले उन्होंने मेरे को छोड़ा एंड देन वो उसके बाद गई। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग बहुत हेल्पफुल है और यहाँ पे बहुत लोग बात करना चाहते हैं आपसे। अगर आप उनसे कुछ बात करते हैं तो वो ऐसे नहीं करेंगे कि एक बार बात किया फिर रह गए, वो आपसे बात करेंगे, वो आपकी आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपसे खुद बात करेंगे। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी यहाँ के लोगों की, कि ये लोग बहुत ज्यादा इंक्लूसिव हैं और बहुत ज्यादा मतलब अच्छे हैं। और रही बात पढ़ाई की, तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई है और हो रही है, बिकॉज जैसे कि आपने बोला सीधा रोट लर्निंग से प्रैक्टिकल लर्निंग पे आना। तो अभी तक हम लोग बहुत ज्यादा बुक्स के थ्योरी व्योरी पे बेस्ड चीजें करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उससे मुझे अपनी किसी भी चीज में अप्लाई करना पड़ रहा है, उससे मुझे प्रैक्टिकली अप्रोच करना पड़ रहा है। तो वो थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन उतना ही वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं एक नई चीज सीख रही हूँ तो मुझे बहुत मजा भी आ रहा है। और जैसे कि मेरा कोर्स स्ट्रेटेजिक पब्लिक रिलेशंस है, तो इसमें बहुत सारा मेरा कोर्स पॉलिटिक्स से, सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो जो जो आजकल की बातें हैं इन सब चीज से रिलेट करके ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बना रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कोर्स, पर थोड़ा सा हार्ड है।
चलिए कोई बात नहीं, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। जब मैं भी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी, मुझे याद है कि मेरे जो ग्रेड्स थे वो बहुत बुरी तरह से लो हो गए थे, क्योंकि पहला एक दो सेमेस्टर आप समझने में लगा देते हैं कि असल में ट्यूटर को चाहिए क्या, बट यू विल गेट देयर। ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो हमने पढ़ाई की बात कर ली है ना, इसके अलावा आपकी दिनचर्या कैसी होती है? जैसे आपने अभी बताया इंटरव्यू से पहले कि आप स्विमिंग करती हैं, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज आप करती हैं पढ़ाई के अलावा?
पढ़ाई के अलावा मैंने एक डांस सोसाइटी ज्वाइन की है, पर क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पा रही हूँ, कभी कभार मेरे असाइनमेंट्स अभी हैं, तो मैं अभी फोकस कर रही हूँ कि मैं अपना पूरा पढ़ाई पे ध्यान दूँ। तो लेकिन मैं, जिम है मेरे इधर, तो मैं वहाँ जाके अपना डांस प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। मैं जिम जाती हूँ, जो कि मैं कभी दिल्ली में नहीं गई हूँ, तो पहली बार मैं यहाँ पे जिम कर रही हूँ। और स्विमिंग में सीख रही हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी स्विमिंग नहीं की है, तो मुझे कभी डर लगता है कि कभी गलती से मैं कहीं बीच बीच में हो और मैं डूब जाऊँ, तो इसलिए मैं स्विमिंग भी सीख रही हूँ।
चलिए बढ़िया। और तृप्ति, आपने इतना लंबा सफर तय किया है ना, तो अभी तक आपने जिंदगी से क्या सीखा है? अगर कोई एक एडवाइस आप देना चाहें उन बच्चों को या उन लोगों को जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं रास्ता नहीं पता है या फिर डर जाते हैं?
मैं तो अपनी जर्नी से यही कहूंगी कि मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी पाना है और अब अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए और वो मिल जाएगा तो अपने आप नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे जब मुझे पता चला कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो मैंने अपने ग्रेड्स पे मेहनत किया, मैंने अपनी इंग्लिश पे मेहनत किया ताकि मैं अपना आयल्स निकाल सकूँ, मैं अपना स्कोर बना सकूँ। तो अगर मैं वो छोड़ देती कि हाँ मुझे तो मैम ने बोला है और मुझे मिल जाएगा और मैं ये सोचती, तो क्या पता आज मैं यहाँ नहीं होती। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेहनत करना चाहिए ताकि आप जो गोल सेट कर रहे हैं उस गोल तक पहुंच सके, ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है।
चलिए तृप्ति, एक बार फिर से आपका SBS हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।
थैंक यू सो मच।
SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे।
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.